यह द्रव्य है गुण है या पर्याय है? पर्याय है तो कौन से गुण की? संस्कार। संस्कार के बारे में ये कह रहे हैं कि संस्कार को हम द्रव्य माने या गुण माने या कि पर्याय माने। अगर हम उसको पर्याय मानते हैं तो वो कौन से गुण की पर्याय है, क्योंकि पर्याय तो एक एक समय की होती है। द्रव्य ध्रुव है, फिर ये अनादिकालीन संस्कार की क्या स्थिति है? देखो भाई, कोई भी पर्याय होती है तो वो द्रव्य या गुण में से ही प्रकट होती है। संस्कार को हम पर्याय मानेंगे। जैसे जैसे हम कर्म बांधते हैं वैसा हमारे आत्मा पर संस्कार पड़ता है। वो जो संस्कार है वो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन वो चेतना के साथ संबद्ध होकर के सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनना, ये पुद्गल का जीव पर भी उपकार है और जीव का भी जीव पर उपकार है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। तो इससे ये निश्चित हुआ कि पुद्गल तो है द्रव और उसकी पर्याय है संस्कार। हम अपनी भाषा में कर्म की भाषा में कहेंगे कर्म और सामान्य भाषा में उसी को कहेंगे संस्कार। हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त है वो हमारे ज्ञान के संस्कार से प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा में कहेंगे ज्ञान के क्षयोपशम से प्राप्त, क्योंकि जितना जितना कर्म का आवरण हटा है उतना ही क्षयोपशम हुआ है। हमारे लिए ज्ञान का उतना ही संस्कार, जितना क्षयोपशम होगा उतना ज्ञान का संस्कार। इस तरह सब प्रकार से विचार करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि यह संस्कार और कुछ नहीं है, एक पर्याय है। वो पर्याय कौन से गुण की है? तो जैसे जिसके संस्कार, ज्ञान का संस्कार है तो वह पर्याय सद्रूप होगी। हाँ, और विशेष रूप से देखा जाए तो अगर हम चेतना की पर्याय माने तब तो फिर वो हमेशा रहनी चाहिए, फिर तो वो सिद्ध अवस्था में भी होनी चाहिए। इसलिए चेतना की पर्याय तो नहीं है, लेकिन पुद्गल उसका उपादान कारण है, निमित्त से होती है वो चेतना के। संस्कार चेतना में होते हैं, चेतना के निमित्त से होते हैं, पर उनका उपादान कारण कौन है? जैसे हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं तो राग द्वेष का उपादान कारण क्या है? वास्तव में तो ये राग द्वेष जो विकारी भाव हैं, जो विकारी संस्कार हैं, वे उद्गल उनका उपादान है आत्मा के निमित्त से। क्यों? मेरे ख्याल से अब प्रश्न इनका सिर्फ ये है कि अपन जो कहते हैं कि अनादि संस्कार से ये चला आ रहा है, तो पर्याय तो एक समय की होती है। एक उदाहरण से समझें अपन। जैसे कि अपन शाम को लौट के आते हैं और माँ पूछती कि भैया वो हमने जो तुम्हें 12 बजे डिब्बा भेजा था खाने का, वो खाया कि नहीं खाया? अरे माँ क्या बताएं, ग्राहकों का तांता लगा रहा, समय ही नहीं मिला। अच्छा, तो क्या एक ही ग्राहक में उलझे रहे क्या? नहीं, एक आया गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ गया, ये निरंतर चलता रहा। इसलिए क्या कहेंगे अपन? ग्राहकी से फुर्सत नहीं मिली। ठीक इसी तरह कर्म अपना फल देने से पहले और नए संस्कार उत्पन्न कर चुका है फिर बाद में निद्रा को प्राप्त होता है। यह जो संस्कार वो निरंतर रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संस्कार अनादि काल से चले आ रहे हैं। राग द्वेष के संस्कार वही के वही नहीं है भैया, मिथ्यात्व हमने आज बांधा है तो वो हमें फल कब देगा, और उस बीच में हम और कितनी स्थिति वाले मिथ्यात्व कर्म को बांध लेंगे, वो सब अपने अपने ड्यूरेशन पूरे होने पर और हमें फल देता चला जाएगा। इसलिए अनादिकालीन जो संस्कार है वो कथन की शैली है, वास्तव में तो सब कर्म अपना पर समय समय पर उदय में आकर के निर्धारित होते चले जाते हैं। ऐसे सामान्य अनंत प्रभु जिनके पांचों कल्याणक नहीं होते, समोशरण आदि की रचना नहीं होती, उनके चालीस गुण किस प्रकार घटित होंगे? भैया ये जो अरहंतों के चालीस गुण कहे हैं सो वे तीर्थंकर की मुख्यता से कहे हैं, ये ध्यान रखें। मुख्यता वहां पर मैक्सिमम अरहंत को कितने होंगे तो तीर्थंकर की अपेक्षा से चालीस होंगे, बाकी सब में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, जिनका जन्म कल्याणक नहीं हुआ उनको जन्म के अतिशय 10 तो होंगे ही नहीं, तो 34 अतिशय में से 10 ये कम हो गए, और केवल ज्ञान के अतिशय तो सभी को होंगे तो केवल ज्ञान के 10 होंगे। देवकृत 14 अतिशय, समोशरण होने पर ही देवकृत 14 अतिशय होते हैं, समोशरण लगा नहीं है इसलिए वे भी नहीं होंगे। 8 प्रातिहारी, 4 अनंत चतुष्ट है, ये तो सबके समान रूप से ही रहेंगे। इस तरह से अरहंतों के मैक्सिमम अरहंतों के 40 होते हैं, बाकी सबके जरूरी नहीं है कि 40 ही रहें, कमती भी। हाँ, तीर्थंकर भगवंतों का शरीर भी केवल ज्ञान प्राप्ति तक औदारिक ही है, ठीक है। तो आहार निहार होता है या नहीं होता? यदि निहार ही नहीं है तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर के पुत्र पुत्री उत्पन्न होने का प्रसंग कैसे आएगा? अरे भैया थोड़ा और समझो इसको, तीर्थंकर की तो छोड़ो, तीर्थंकर के माता पिता को निहार नहीं होता, तीर्थंकर जिस माँ से जन्म लेते हैं उसको अशुद्धि तक नहीं होती, अब करो क्या करो। हाँ वो महापुरुष हैं, और तीर्थंकर ऐसे हमारे जैसे माँ के पेट से जाल में लिपटे हुए और मांस और खून से लिप्त नहीं आते हैं, ऐसे बिल्कुल बाहर आकर के, ना उनको कोई पहुंचना धुलाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है उनके लिए, इतने पवित्र होते हैं उनकी देह, पढ़िएगा उसमें तो मालूम पड़ेगा। अब रही बात जिनके निहार नहीं होता उनके क्या संतान उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है कि यदि निहार नहीं होता तो गृहस्थ अवस्था में पुत्र पुत्री उत्पन्न कैसे होंगे? तीर्थंकर के भी होते हैं और तीर्थंकर के माता पिता उनके भी निहार नहीं होता, तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते तब उनका आहार भी नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान से पहले गृहस्थ अवस्था में या मुनि अवस्था में उनके निहार नहीं होता। निहार के मतलब समझते, मलमूत्र की बाधा नहीं होती, निहार का मतलब मलमूत्र की बाधा नहीं होना, वो निहार कहलाता। और आहार भोजन तो करते हैं लेकिन उनके आमाशय में जाकर के वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता 100%। जैसे कि अपन लोग को साइंस के हिसाब से देखें तो अपन दूध पीते हैं तो उसका 90% स्वस्थ व्यक्ति को दूध का 90% एब्जॉर्ब होता, 100 ग्राम पिया था 90 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगा, 10 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो मल और मूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनके लिए वो भी नहीं होता, उनका पूरा 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो निहार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थंकर को भी, तीर्थंकर के माता पिता को भी, पर उनके बाकी सब चीजें नॉर्मल जैसे अपन के होते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। प्रश्न तो उठता है मन में, द्रव दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, हाँ भैया उसके स्वभाव में कभी विकृति का प्रवेश नहीं है, किस अपेक्षा से? शक्ति की अपेक्षा, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, इतना अपन को जरूर समझना चाहिए। उसके स्वभाव में शक्ति की अपेक्षा से कभी विकृति नहीं होती। अशुद्धता तो एक एक समय की पर्याय में है, अशुद्धता के समय भी आत्मद्रव तो द्रव अपरिणामशीली है, फिर क्या पूरे आत्मद्रव को ही अशुद्ध मान लिया जाए, जबकि अशुद्ध आत्मा ने अपने त्रिकाली संकोट की स्वभाव को बिल्कुल भी मदद नहीं किया। ऐसी स्थिति में स्वभाव दृष्टि से द्रव गुण पर्याय तीनों ही क्या शुद्ध नहीं है? ये तो आखिरी की लाइन जो आपने बहुत अच्छी लिखी, स्वभाव दृष्टि से या जिसको अपन कहें निश्चय की दृष्टि से है द्रव गुण पर्याय तीनों ही शुद्ध हैं, ये निश्चय की कथनी है। लेकिन जब हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो जिसकी पर्याय अशुद्ध है उसके गुण भी अशुद्ध हैं, उसका द्रव्य भी अशुद्ध है। जिसमें से वो पर्याय निकली है वो तो शुद्ध रहा है, और पर्याय अशुद्ध निकले ऐसा नहीं होता। स्वभावात अन्यथा भवनम विभाव, स्वभाव से अन्यथा परिणमन होना ही विभाव कहलाता है। कथन करने की शैली है भैया, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से हम जब कथन करते हैं तब दूसरे के संयोग की अपेक्षा से कथन करते हैं, तब हमें कहना पड़ेगा कि ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के ही हैं और विकारी हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राग द्वेष परिणाम अगर आत्मा के हैं तो फिर आत्मा इनसे कभी मुक्ति नहीं हो सकता, प्रश्न उठेगा। तो कहते नहीं, वास्तव में तो ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये उसकी वैभाविक स्थिति है। तो दोनों चीजें हो गई, एक तरफ आप कहते कि राग द्वेष परिणाम आत्मा के हैं, दूसरी तरफ कहते कि आत्मा के नहीं है। तो कहते हमारी बात समझो आप, यही तो बहुत मुश्किल है जैन दर्शन को बस इसी जगह पर समझना। और हम लोग बहुत जल्दी धारणा बना लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, कहते हैं कि राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है लेकिन भी विभाव रूप परिणमन तो है कि नहीं, इसलिए आत्मा के हैं भी और आत्मा के नहीं भी। आत्मा के नहीं है इसलिए आत्मा से उनको जुदा किया जाता है, और आत्मा के हैं तभी तो जुदा कर पाएंगे। हम अपने माने ही नहीं, खुद गल के हैं सुरैया हूं ऐसा मान ले में तो कौन होगा जो कि उसको पृथक करने का विचार करेगा। तो पहले मानना पड़ता, हम बीमार हैं पहले जब मानो, लेकिन बीमार होना हमारा स्वभाव नहीं है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, तब जाके हम बीमारी से मुक्त हो पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त। हमारा बीमारी स्वभाव ही है तब स्वास्थ्य होने की कोई चिंता ही नहीं, फिर तो अब ऐसा ही है। ऐसा भी नहीं, अगर दो में से एक मानोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। दोनों चीजों को, एक शक्ति की अपेक्षा, एक अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से तो हमारा अशुद्धि ही परिणमन हो रहा है, द्रव्य गुण भी पर्याय भी अशुद्ध हैं, और शक्ति की अपेक्षा देखें तो हम अपने उस शुद्ध स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण दिया है पानी का स्वभाव कैसा है, शीतलता, लेकिन अग्नि के संपर्क में आकर के गर्म हो गया, तो क्या उसने अपने शीतलता के स्वभाव को छोड़ दिया क्या? कहते नहीं, कॉन्टेक्ट से अलग कर दो उसको अग्नि के, फिर देखो वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, वो अपने स्वभाव में जो कहते हैं वहां। इसी तरह पर्याय का अशुद्धता तो नाश को नाश करने की क्या विधि है भैया? ऐसा मत करो, पर्यायगत ही क्यों कह रहे आप? हमारे अंदर जो भी द्रव्य गुण पर्याय में अशुद्धता आई है उसको हम निकालने के लिए क्या करें? ऐसा पृथक पृथक मत करो, हम में से कोई हमारी पर्याय अलग हो, हम में से कोई गुण अलग हो, हम में से कोई द्रव्य अलग हो, ऐसा तो है नहीं। सब एक एक साथ इतने गड्ढमड्ढ हैं कि एक दूसरे को अलग कर ही नहीं सकते हैं आप। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम, बताइए द्रव्य के जो आश्रित रहते हमेशा, द्रव्य के बिना जो ना रहे, जैसे कि आप कहो कि काला रंग ले आओ तो भाई किसी ना किसी फॉर्म में लाएंगे काला रंग, नहीं काला रंग लाओ, हमें ये चीज नहीं चाहिए काले रंग की, आप तो काला रंग ले आओ, तो ऐसे कैसे? वो तो कोई ना कोई पर्याय के साथ आएगा काला रंग, और वो पर्याय भी किसकी है? किसी ना किसी द्रव्य की होगी। आप एक को लाएंगे तीनों एक साथ आएंगे। आचार्य उदाहरण देते जैसे नट बोल्ट, नट बोल्ट इतने एक दूसरे में फंसे हैं, आप एक को खींचेंगे दोनों आएंगे। ठीक इसी तरह से आप द्रव्य लेंगे तो कोई ना कोई गुण है और उसकी पर्याय, आप पर्याय लेंगे तो द्रव्य और गुण है, आप गुण लेंगे तो द्रव्य और पर्याय, दोनों तीनों एक साथ होने वाली चीजें। इसलिए ऐसा नहीं कहें कि पर्यायगत अशुद्धता को, बल्कि ये कहें कि मेरे भीतर जो अशुद्धता आई है उस अशुद्धता को दूर करने के लिए भैया अशुद्धता सबसे बड़ी किस बात की है? मुंह की है। अगर देखा जाए तो सारे कर्मों का राजा मुंह है, और वो अगर हमने सबसे पहले उसी को नष्ट करना पड़ता, बाकी सब तो फिर फौरन भाग जाते हैं एक के बाद एक। अगर मोह नष्ट कर लिया, सीधे मोह को नष्ट करके बारहवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, शेष जो तीन घातीय कर्म हैं वे भी नष्ट होते हैं बारहवें गुण स्थान के अंतिम समय तक, और सीधे जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मोह जो है वो सबसे ज्यादा अपने लिए विकृति करने वाला, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में तो ज्ञान ढक गया है, ज्यादा घाटा नहीं, दर्शनावरणी कर्म के उदय में मेरा दर्शन गुण ढक गया है, वीर्यांतराय के उदय से जो है या कि अंतराय कर्म के उदय से मेरे अपने स्वभाव की प्राप्ति में थोड़ी बाधा आ रही है, विघ्न पड़ रहा है, लेकिन मोह की वजह से तो विकृति ही हो गई, पूरा का पूरा विकृत। जैसे कि चार लड्डू हैं और तीन में से अपन को थोड़ो थोड़ो मिलो है, कोई हर्जा नहीं, और एक तो पूरा मिलो लेकिन उसमें विष मिला है, बताओ है काम का? कहते नहीं भैया अभी थोड़ी थोड़ी ठीक है, ये तो पूरा का पूरा पूरा मिल रहा लड्डू लेकिन विष मिला हुआ। सबसे ज्यादा दर्शन मोहनी हमारी श्रद्धा को विकृत करता है, चारित्र मोहनी हमारे चारित्र को विकृत कर देता है, पूरे जीवन को विकृत करने वाला तो यही मोहनी कर्म है। इसलिए उसकी उस विकृति को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरहंत भगवान की भक्ति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव और विषयों से विरक्ति, मोह के ये लक्षण हैं। अगर ये ना हो तो अरहंत भगवान में भक्ति ना हो, जीवों पर करुणा का भाव ना हो और विषय कषाय में आसक्ति हो, यही तो मोह का लक्षण है। कहते इसमें बचने के लिए अरहंत भगवान की घाट बाट से भक्ति करो और प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखो और विषयों से आसक्त मत हो, तो मोह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दर्शन मोह तोड़ने के लिए भगवान की भक्ति, चारित्र मोह तोड़ने के लिए प्राणी मात्र से करुणा और विषयों से अनाशक्ति, इस तरह से लिया। आज के समय में सच का मात्र कम होता जा रहा है, बात तो सही है, झूठा चालाक चापलूस व्यक्ति हमेशा ऊंचाई को छू रहा है, ऐसा क्यों है? ये तो स्वप्नों में लिखा है, चक्रवर्ती के स्वप्न है या कि चंद्रगुप्त के 16 हाँ चक्रवर्ती के स्वप्नों में लिखा है, अच्छा वो अब हम ये भूल जाते हैं, मानो स्वप्न में लिखा, ये तो पक्का, क्यों भाई? इसमें तो किसी चंद्रगुप्त के स्वप्न 16 स्वप्न, ठीक, तो चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में आप सुधार लेंगे, आप चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में वो चक्रवर्ती निकल जाता था मुंह से, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न है उसका फल क्या लिखा है? हाथी के ऊपर बंदर उछल कूद कर रहा और हाथी चुपचाप खड़ा, जितने सम्यक दृष्टि होंगे, सच्चा जीवन जिएंगे, ईमानदार होंगे, वे चुपचाप रहेंगे, बाकी जो है उनके ऊपर बंदर जैसे उछल कूद कर रहा है, बेईमान आदमी चालाक आदमी वो आराम से अपना जीवन जिएगा। ये पंचम काल में ये लिखा हुआ है, अपन देख रहे हैं वर्तमान में, सूत्र राज करेंगे ऐसा लिखा, देख रहे हैं अपन, कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अपने देखने में ना आ रही हो। हाँ, जिसका आचरण भ्रष्ट होगा वो राज्य करेगा, कौन पर? अच्छे आचरण वाले पर राज्य करेगा, बताओ। तो इसी तरह से इसमें अपन को क्या करना चाहिए? अपन को आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ऐसा सोच करके कि ऐसा तो हो गई, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना एक चीज, और दूसरी चीज उसमें निमित्त नहीं बनना। हाँ, हम तो हमेशा सच्चाई का सम्मान ही करें, ठीक है, दुनिया अगर सच्चाई का सम्मान नहीं कर रही है क्या करें, काल दोष है, लेकिन मैं तो हमेशा सच्चाई का ही सम्मान करूं, ऐसा हरेक कोई अपने मन में विचार रखे। स्वयं सच्चा ना बन पाऊं लेकिन सच्चाई का तो सम्मान करूंगा, स्वयं मेरा जीवन झूठा हो सकता है लेकिन झूठ को मैं सम्मानित नहीं होने दूंगा, ये चीज जो है वो अपने को महाराज सवेरे आपने प्रवचन में जो गलती होगी तो कुछ बड़ा डर लगता है, आपने अपने प्रवचन में भगवान गुरु और धर्म ये तीन आलंबन अपनी आत्मोन्नति के लिए सुझाए थे, अब यह सुझाए तो थे, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या प्रत्येक मुनि जिसने दिगंबर मुनि मुद्रा धारण की है वो सच्चे गुरु हैं क्या? और इसकी कसौटी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कसौटी है अपने पास, तो आप तेनो चिन्ह दोषेन सर्वज्ञेना गवेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत। हमारे भगवान वो हैं जो 18 दोषों से रहते हैं, जिसमें जन्म मरण से और कर्मों से जो मुक्त हो गए वे हमारे भगवान, विषया सावसा तीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी प्रसुद्यते, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, विषय आरंभ विषयों की आशा नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहते हैं, काय में लगी रहती, प्रपंच में, हाँ प्रपंच में नहीं लगी रहती, वो लगी रहती अपने ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सहा प्रशस्त थे, मेरे लिए तो गुरु वो ही है। आप तो पग मन उल्लंघ्य मत दृष्टि गुरु कम नहीं, आप यही है, आप तो पग मन उल्लंघ्य, आप तो पग मन उल्लंघ मत दृष्टि रोधकम तत्वोपदेश कृतशास्त्रम शास्त्रम कापत घटनम। शास्त्र की परिभाषा ये है कि भगवान के द्वारा कहा हुआ हो, किसी प्रकार के विरोध में विरोध उसमें ना आता हो, ऐसे विशेष गुण, और जो हमेशा वितरागता का उपदेश देता हो, तत्व का उपदेश देने वाली ही जिनवाणी है, वितरागता का उपदेश देने वाली। तो अपने और सरल भाषा में करने हो तो छाला में लिखा, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सार, ठीक तीन लाइन है। कौन है देव हमारे? जिनेन्द्र भगवान। गुरु कौन है? परिग्रह से रहे, अंतरंग भी और बहिरंग भी। अकेले कपड़े उतार देने से तो बहिरंग परिग्रह छूटा है, लेकिन अंतरंग में भी छूटना चाहिए, हैं? ये कसौटी है उसकी। इसलिए क्या वे संसार घटाने वाले गुरु हैं? क्या हमें उनका आलंबन करना चाहिए? भैया पानी क्या कहते, पानी पियो छान के, हाँ पानी पीजे छान के गुरु कीजे जान के। तो जान लो कि अपना कल्याण इनके चरणों में होगा कि नहीं, नहीं तो अपन और प्रपंच में फंस जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दिगंबर मुद्रा जहां भी दिख जाए उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा हमेशा करना, चाहे वो स्वयं उस दिगंबर मुद्रा का सम्मान कर पाता हो या ना कर पाता। जिसने दिगंबर मुद्रा धारण करी है वो स्वयं उस दिगंबर महत मुद्रा का महत्व भले ही ना समझता हो, लेकिन हम तो समझते हैं, उस दिगंबर मुद्रा को देख करके प्रणाम, बस इतना हमारा काम। इसके बाद अगर उनके चरणों में अपना मोक्ष मार्ग बनाना है तो फिर बाकी फिर आप अपनी परीक्षा कर लो, इससे और कोई आवश्यक वो नहीं है। अच्छी बात, चर्या का समय, चर्चा का समय 5 से 6 हो तो अच्छा रहेगा, सबकी अपनी अपनी सुविधा है। भैया हम बताएं एक दूसरे की सुविधा देखेंगे, अपन थोड़ी बहुत असुविधा झेल लो, 2-4 दिन की बात है, हम कौन परेशान, ज्यादा नहीं कर रहे हैं थोड़े दिन भोजन भोजन की चिंता है और तो कुछ नहीं, तो भोजनों की डब्बा वब्बा लेता है अपनों तीन खा लो, सब जने मिलके आराम से, उसमें क्या है, ऐसा कर लेना चाहिए। हाँ वो कुछ लोगों को दिक्कत होती, कल भी वो कह रहे थे, अब क्या करें, सबके हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा फिर मैं अगर 6:30 बजे से करूँ तो फिर 7 बजे मुझे, जब 7:15 बजे यहाँ से जब उतनी दूर जाना है तो पहले ही से जाना पड़ेगा, फिर आप कहोगे गिल्लू महाराज जी तो जो अंधियारे में चल रहे थे, वो देर से सामायिक में बैठे कैसे महाराज जी, हैं? तो ये दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए ये टाइम सबके लिए सुटेबल है, थोड़ा एडजस्ट करें। क्या जमीकंद को सुखा के उनका सेवन कर सकते हैं? 2 जमीकंद तो ऐसे हैं, 2 जमीकंद ऐसे हैं, हल्दी है और सौंठ है, जो कि डिहाइड्रेशन के बाद में वो बैक्टीरिया से रहित हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने से, बैक्टीरिया से रहित करने की 6 विधियों में से एक डिहाइड्रेशन है, वो डिहाइड्रेशन सारे जमीकंद पे नहीं लगता, वो सिर्फ 2 पे लगता है, हल्दी और सौंठ। वे सूख जाने पर, अच्छा वे गीली अवस्था में भी एंटीबायोटिक होते, उनके चारों तरफ इस तरह का सिक्रीशन होता है कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, और वे जमीन में बहुत डेप्थ में नहीं जाती हैं, वे छिछली हुई ऊपर ऊपर मुश्किल से 3 इंच या 4 इंच जमीन के नीचे रहती, सूर्य प्रकाश उतनी जमीन को प्रासुक करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए वह जमीन 3-4 इंच की प्रासुक होती रहती, उसमें जीवराशि कम होती है। हल्दी और इसके बाकी सब चीजों के बारे में नहीं है, बाकी सब नीचे जाती है, ये स्टेम रूट है, बाकी जैसे आलू है स्टेम रूट है, हाँ वो उसके तने में से निकली हुई जड़ों में बल्ब की तरह लगा रहता है, आज की साइंस की भाषा में। इसलिए ये दो चीजें अपने यहाँ पर मान्य हैं। लेकिन मूंगफली तो जमीन गंध है ही नहीं, मूंगफली तो एरियल रूट है, वो तो जमीन में होता, वायवीय पौधा है, हवा में लगता है, फिर बाद में जो है उसकी जो जड़ें क्या है, जड़ें जमीन से ऊपर रहती उसकी। जो पौधा है मूंगफली का, कभी खेती वाले से पूछ लीजिएगा, मैंने पूछ के पता किया, तो वो पौधा तो पूरा ऊपर रहता है और उसकी जड़ें जो है वो जमीन से ऊपर आ जाती है, उनमें मूंगफली लगती है। और फिर उसको क्या करते हैं वो, कि ये जो चूहे वगैरह बिगाड़ ना दें, चिड़िया उसको खाना ले, तो थोड़ी सी उसके ऊपर मिट्टी ढक देते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए उसको बढ़ने के लिए। जब वो बढ़ना शुरू होती है, जब उसमें दाना पड़ने लगता है, तब उसको थोड़ा सा दबा देते हैं। वास्तव में तो वो एरियल रूट है, मतलब वो जमीकंद नहीं, अंडरग्राउंड रूट नहीं है, वो वायवीय पौधा है, भूमिगत पौधा नहीं है, ये साइंस भी कह रहा है। इसलिए मूंगफली जो है जमीकंद के अंतर्गत नहीं आती। बहुविधी फलों का निषेध है, जैसे कि अमरूद, अच्छा निषेध है, फिर हम अमरूद, तरबूज, पपीता, भिंडी, टमाटर आदि का सेवन क्यों करते हैं? बहुबीजी का मायने ये है ही नहीं, अपन ने अपने मन की व्याख्या कर ली है। बहुबीजी तो वो है जिसमें कोई बीज तो बहुत हो और दल कोई काम का ना हो, देखना पड़े। जैसे कि सीताफल, सीताफल खा लो और पहले तोल लो, खाने से पहले हैं, और फिर बाद में जितना कचरा बचा वो तोड़ लो, फिर पता लगेगा कि भीतर 50 ग्राम गया, बाकी सब बाहर ही है। ज्यों का इतने सारे बीज मिटाए, इतना फल नष्ट किया, उसमें सैकड़ों बीज खराब हुए। और पपीता में से एक किनारे पर इतने बीज हैं, एक तरफी अलग कर दिया, पूरा पपीता खाने लायक। पपीते को बहुबीजी किसी आचार्य भगवंत ने नहीं देखा, किन्हीं ने मान लिया हो, सो मान लियो, अपने घर की किताब लिख लो और उन्हें लिख लो तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन आचार्यों की लिखी किताब में तो कहीं नहीं है कि पपीता बहुबीजी है। फिर तो भिंडी है, भिंडी में भी बहुबीजी, फिर तो गिलकी है, गिलकी में भी बड़ी भिंडी, तो कौन सी चीज है? लौकी रोज खाते हैं, उसमें कितने बीजा हैं? लेकिन उनके बीज अलग कर देने के बाद भी दल इतनी मात्रा में है कि वह वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, और वे बीज कच्ची अवस्था में है, वो देने पर उनमें कोई पेड़ उगता नहीं है, इसलिए योनि भूत सचित्त के नष्ट करने का भी दोष नहीं लगता। हाँ, अगर आप और ज्यादा सैद्धांतिक रूप से पूछें तो एक होता योनि भूत सचित्त, मतलब जिसमें जीव पैदा होने की संभावना थी उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमने उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, उस बीज को भी नष्ट नहीं किया है, जिसमें कि जब बीज पक जावे और उसमें नए पौधे को उत्पन्न करने की सामर्थ्य आ जाए, उस बीज की क्षति करो तो दोष है। लेकिन वैसे वाले अवस्था में ये नहीं होता, इसलिए भैया अमरूद है सब खाते हैं, तरबूज बिल्कुल अलग चीज है, तरबूज बहुबीजी में नहीं आता। तरबूज तो चूंकि आपके रेड वाला उसको बोलते तरबूज ना, रेड कलर वाला, उसमें क्या होता है, पानी वाला फल है ये और बड़ा फल है, और बहुत जल्दी उसके भीतर थोड़ा सा भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ही आप उसको बनाएंगे और वातावरण की ऑक्सीजन को ग्रहण करके जीव राशि उत्पन्न होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा भी उसमें नमक डाल करके आप, और तरबूज को नमक डाल करके जरा सा तो रख दो, फिर उसके बाद में माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सामने सामने देखने में आ जाएगा जीव राशि। पपीता का बताई दिया, भिंडी के साथ में तो एक प्रॉब्लम ये है कि भिंडी में कहां एकदम कोई इल्ली वगैरह पैदा हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाती, सभी में होती हो ऐसा नहीं, अवक्ष नहीं है, आप नहीं खाएं ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अवक्ष भी नहीं, उनको थोड़ा सा खोल दें कि अगर उनको अच्छा लगे नहीं तो। टमाटर तो जो है अपने यहाँ पर अवक्ष नहीं है, आचार्य महाराज ने तो टमाटर को अवक्ष नहीं माना, कोई भी आचार्य नहीं माना टमाटर के लिए, बस इतना जरूर है, कई लोग ऐसा लॉजिक देते हैं कि लाल रंग का होता है, तो लाल मिर्ची खा लेंगे वो, आलू बुखारा खा लेंगे वो लाल रंग का, हाँ लेकिन वो टमाटर नहीं खाएंगे लाल रंग का, बहुत होशियार है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, वो बीज खाए जाते हैं पूरे के पूरे, उन बीजों को भी हटा दो अगर, तब भी सूप दल बहुत इतना अधिक मात्रा में, इसलिए उसको बहुबीजी की कैटर में नहीं रख सकते। इसलिए ये
दोनों चीज
आप नहीं खाओ ये बहुत अच्छी चीज है, मैं कहां कह रहा हूं कि आप खाओ,
मत खाओ, जितनी कम से कम खाओ उतना अच्छा, लेकिन अभक्ष मत करो, क्योंकि जब तक आचार्य ने उसे अभक्ष नहीं कहा, बैगन को अभक्ष कहा है, क्यों बैगन को अभक्ष कहा, देखना बैगन की जो पोजीशन है, और अनार, अनार में कितने बीज होते हैं, और लाल रंग का होता है बिल्कुल, और उसका रस तो और बिल्कुल रेड होता, अब करो क्या करना, रेड कमाऊंगा है, और बीज भी उतने सारे, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक बीज के ऊपर एक कवच है, वो अपने आप में इंडिविजुअल फल है वो, और अनन्नास में, और ये जो क्या बोलते हैं, मैंने अभी कहा था आपसे, बैगन, बैगन में एक बीज और दूसरे के बीच में कोई डिवाइजेशन लाइन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, हाँ, लेकिन इसके बीच में एक कवच होता, हर एक बीज एक अलग कवच से लिपटा हुआ, देख लो आप कभी अनार को देखना हो, वो अपने आप में इंडिविजुअल, इसलिए उसमें बहुविधि का दोष नहीं है, लेकिन बैगन, बैगन में सब उसके उस दल के साथ में इतने बने कहते कॉम्पैक्ट, और जब गैल्वेनोमीटर लगा करके और बैगन को देखा गया तो सबसे ज्यादा शेल्स उसमें, सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति उसमें, ये साइंस ने प्रयोग किया, इसलिए हमारे यहाँ पपाई सभक्ष में बैगन को तो रख दिया बाकी चीजों को, और बैगन के साथ ये है कि जहां वो उसका डंठल लगा रहता उसमें चार ऐसे लगे रहते डंठल में, एक ऊपर डंठल और उसमें चार ऐसे, और बैगन लगा रहता उसमें, तो उन चार में से किसी भी एक जगह, एक के नीचे हल्का सा छेद होगा, उसमें से चार इंद्री जीव उस छोटे से बैगन में पहले नंबर प्रवेश करता है, तब वो जाकर के परमंट करता है पूरा बैगन, और तो बड़ा होने में उसकी मदद से होता है, उस चौर इंद्री जीव की वजह से, इसलिए अपने यहां पर बैगन का निषेध किया, ये साइंस है। हाँ, और अगर सीधा सीधा और आपने बिल्कुल उसको पकने के माने उसमें आग में डाल करके कर दिया तो फिर तो बिल्कुल ही कोई उसमें रहा ही नहीं, वैसे भी अगर ऐसा नहीं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वैसे बना करके भी खाएं तो उसमें आउट उसका जो बाहरी ओवर क्या कहते हैं उसको नहीं उसका जो देखने पर कैसा मालूम पड़ता है, हाँ उसकी सब्जी जरा इमेज करें अपन, कैसी मालूम पड़ती, कटहल की सब्जी कैसी मालूम पड़ती, कटहल अपने आप में कैसा मालूम पड़ता है, तो ये भी देखना आवश्यक होता है, अभक्ष इन सब वजहों से। महाराज बताएं, देखो हमसे खाने पीने की चीजों के बारे में ज्यादा मत पूछना, नहीं तो हम ऐसी ऐसी बात बता देंगे कि या तो फिर खाया नहीं जाएगा, और खाओगे तो ज्यादा पाप लगेगा, पहले मालूम नहीं था इसलिए खाते थे, अब जानबूझ के खाओगे तो और ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए खाने पीने की चीजों में पूछोगे बहुत मुश्किल है आज के समय में, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अपन तो अपने जीवन चलाने के लिए भैया दो चार दस चीजें चुन ले और उन्हीं में जीवन चला ले, क्या फायदा, जितनी ज्यादा अपन चीजें चुनेंगे उतनी ज्यादा उसमें विचार करना पड़ेगा और हिंसा भी बहुत होगी।